भगवान महावीर स्वामी की, शीतलनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज, हम सभी लोगों ने पिछले दिनों बहुत सारी बातों पर विचार किया है, उसी में आज एक और विचार हम जोड़ ले। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए किसी रथ में बैठा हुआ यात्रा कर रहा है, रथ में उसने घोड़े भी जोत रखे हैं, और यदि वो उसकी वलगाओं को अपने हाथ में न ले या कि उन वलगाओं को ठीक दिशा में घोड़ों को मुड़ने के लिए प्रेरित न करे, तो बताइएगा क्या वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाएगा? भटक जाए। ऐसे ही विचारों की यात्रा में हमें सावधानी रखनी चाहिए, या ये कहें कि हमारे अपने जीवन की यात्रा में भी हमें सावधानी रखनी चाहिए। हम जिस रथ में बैठे हैं वो रथ कौन सा है? ये हमारा शरीर ही तो रथ है, और उसमें जो घोड़े जुते हुए हैं वे हमारे इंद्रियों के घोड़े हैं, बलगाएं जिन्हें कि हम अपने हाथ में थामना चाहें और उन घोड़ों को संभालना चाहें, तो वे बलगाएं हमारे अपने मन की बलगाएं हैं, और बैठने वाला स्वयं जीवात्मा या कि रथी है। न घोड़े बुरे हैं न रथ बुरा है, यदि कि हम उन बलगाओं को अपने हाथ में रखें, अपने नियंत्रण में रखें और ठीक दिशा में घोड़ों को आगे दौड़ने दें, तो हम अपने गंतव्य तक और आसानी से पहुंच जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के हमने ये बात समझी कि यदि हमारे मन की निर्मलता या हमारे मन का नियंत्रण हम बनाए रख सकें, तो कोई वजह नहीं है कि हम इस संसार से पार ना हो। मन वाले जीव ही संसार से पार हो पाते हैं, जिनके पास मन नहीं है उनके कल्याण में देर है, लेकिन जिनके पास मन है और वो उपद्रव करता है तो उनके कल्याण में भी बहुत देर है, और जिनका मन नियंत्रण में है वे आसानी से अपने इस जीवन की यात्रा को पूरा कर लेते हैं। सारे विकार हमारे मन में ही उत्पन्न होते हैं, सारी प्रवृत्ति हमारे मन से ही प्रेरित होती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि अगर हम अपनी इस प्रवृत्ति को संभाल लें, ठीक है, हम पूरी तरह निवृत्ति में तो नहीं जा सकते, पूरी तरह से सब छोड़कर तो नहीं बैठ सकते हैं, मन वाणी और शरीर की क्रियाएं हम निरंतर करेंगे, यदि हम नहीं भी करें तब भी वे ऑटोमेटिकली चलती रहती हैं, हमारे अनचाहे भी मन वचन काय की क्रियाएं चलती रहती हैं अबुद्धिपूर्वक, तो हम क्यों ना इस तरह का कुछ उपाय करें जिससे कि हम अपनी उन क्रियाओं को दिशा दे सकें और पूरी सोच समझ और विवेक के साथ उन्हें गति दें। हम अक्सर कहा करते हैं कि मन चंचल होता है। भैया, मन का चंचल होना उसका स्वभाव है, वो उसकी डिसक्वालिटी नहीं है, वो उसकी क्वालिटी है। जैसे कि घोड़े की क्वालिटी है कि वो बहुत चंचल और चपल होना चाहिए और बहुत तेज दौड़ने वाला होना चाहिए, ठीक ऐसे ही हमारा मन भी बहुत तेज तर्राट, बहुत जागृत होना चाहिए। बस इतना भर है कि वो घोड़ा बहुत तेज है, सजग है, लेकिन उसकी लगाम हमारे हाथ में हो तो ही हम अपनी जगह ठीक पहुंच सकते हैं। इसी तरह मन के साथ, मन आलसी हो ऐसा ठीक नहीं है, मन कमजोर हो यह भी ठीक नहीं है। मन को तो बहुत सबल और बहुत चंचल, हां चंचल कह रहा हूं, लेकिन उस चंचल मन के ऊपर भी अगर हमारे चेतना की लगाम लगी हुई है, अंकुश लगा हुआ है, तो वो मन हमारी मदद ही करता है, हमारा बिगाड़ नहीं करता है। हम सोचते हैं मन हमारा बिगाड़ करता है, हमें मन को संभालना है, मन को पकड़ करके रखना है। नहीं, मन को तो दौड़ने दें लेकिन ठीक दिशा में। प्रवृत्ति को ठीक कर लेना निवृत्ति की तरफ जाने का मार्ग है। हमारे मन वचन काय की जितनी चेष्टाएं हैं उन सब के द्वारा ही हम अपना संसार निर्मित करते हैं। पुराने संस्कार हमारे अंदर जब प्रबल होते हैं तब हमें वे वैसा ही करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम उन पुराने संस्कारों से प्रेरित होकर वर्तमान में कुछ नया करते हैं, और इतना ही नहीं, उस नया करने के दौरान बहुत सारे नए संस्कार हम अपने भीतर संचित कर लेते हैं। यदि हम ये चाहें कि नए संस्कार हमारे जो खोटे संस्कार हैं वे संग्रहित ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो पुराने संस्कार हैं वे हमें कुछ गलत करने के लिए प्रेरित भी करें तब भी हमें सावधान रहना चाहिए। बस सिद्धांत की भाषा में कर्म फल को भोगने की कला जिसको आ जावे वो कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। बस इतनी सी बात है। आज आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं कि सद्गुरु देह जगाए, मुंह नींद जब उपशमे, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। ज्यो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, त्यों आश्रो को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता। ये जो मन वचन काय की प्रवृत्ति है जिससे कि निरंतर मेरे खोटे संस्कारों का बढ़ना जारी है, जैसे कि निरंतर नदियों में प्रवाह चलता रहे, ठीक ऐसा ही मेरे अंदर अगर ये संस्कारों का आना निरंतर चलता रहे तो मैं कभी भी इन समस्त कर्म संस्कारों से मुक्त नहीं हो पाऊंगा, मैं अपनी उस चेतना की विशुद्ध अवस्था को कभी प्राप्त नहीं हो पाऊंगा। इसलिए जरूरी है कि मैं इन सब पर अंकुश रखूं। शरीर पर अंकुश कौन रखेगा? वाणी पर अंकुश, वो भी बहुत आसान है। कब आसान है? जब मन पर अंकुश रखा हो तो शरीर कभी किसी की आंख ये नहीं कहती कि मैं फलानी चीज देखूं, कभी किसी की जीभ ने अगर आके ये कहो कि आज तो हम ये चीज चख के देखेंगे, कभी नहीं कहा। कभी कानों ने आकर के शिकायत नहीं करी कि अरे तुम ये वाला गाना नहीं सुना रहे, करी क्या, नहीं करते हैं। ये बड़े सीधे लोग हैं, पांचों इंद्रियां ज्यादा उपद्रव नहीं करती हैं अगर उनके पीछे हमारे मन की कुटेव ना हो, अगर बस हमारा मन हमारे नियंत्रण में हो तो ये पांचों इंद्रियां उसी के अनुसार हेल्पफुल भी हैं, वे हमारी मदद भी करती हैं। देखो भगवान के दर्शन करने के लिए आंखें जरूरी हैं, नहीं है जरूरी, लेकिन संसार भर की विकृतियां देखने के लिए आंखें नहीं मिली हैं, इसके लिए जरूरी नहीं है। इससे तो हमारे संस्कारों में कलुषता ही आएगी, लेकिन यदि हम उन्हीं आंखों का सदुपयोग करें और भगवान के दर्शन करके अपने भीतर वैसे ही स्वरूप की कामना करें तो बताइएगा वे आंखें बुरी हैं क्या। इस शरीर के द्वारा यदि हम तपस्या करें तो यह शरीर हमें संसार से, हमें इन कर्मों के बंधन से छुड़ाने में भी मदद कर सकता है, तो शरीर भी बुरा नहीं है। इस वाणी से हम भगवान के गुणगान कर लेवे तो ये वाणी भी बुरी नहीं है। तो सारी चीजों में कौन गाइडेंस दे रहा है, हमारा मन ही दे रहा है, हमें उस पर नियंत्रण करना चाहिए। मन को बांधने या मन को सप्रेस करने की बात नहीं है, मन को सिर्फ एक दिशा देना, सब्लिमाइजेशन, मन का उदात्तीकरण, भावनाओं को हम परिष्कृत करें। हमारे भीतर नाना प्रकार के भाव उठते हैं, संकल्प विकल्प के जाल का नाम ही मन है। शिक्षा और उपदेश जो ग्रहण कर सके वो ही मन है, जो हे और उपादेय को पहचान सके वो ही मन है। अगर इस मन को हम ठीक ठीक दिशा दे दें तो हम अपने पुराने संस्कारों को आसानी से तोड़ सकते हैं और नए संस्कार कर्मों के उन सब को भी हम स्टॉप कर सकते हैं, उन सब को भी आने से रोक सकते हैं। जैसे किसी को हमने इन्विटेशन दे दिया अपने घर में आने के लिए, अब वो आए गई डेफिनेट है, लेकिन अब ये निर्भर करता है कि वो हमारे साथ कितनी देर रुकेगा और दूसरी बार आएगा कि नहीं, हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है। अगर हम उससे गर्म जोशी से पेश आएंगे, बड़ी आवभगत करेंगे, स्वागत सत्कार करेंगे, मानिएगा वो ज्यादा दिन टिकेगा और बार बार आएगा। और यदि कर्म के उदय आने पर मैं सावधान रहूं, गर्म जोशी से उसका स्वागत ना करूं, शांत परिणामों से उसके फल को भोग लूं, तो तुरंत नष्ट हो जाएगा और अगली बार अपना कोई संस्कार बिना छोड़े चला जाएगा। इतनी सी टेक्निक सीखने की बात है। मैंने आम का पेड़ बोया है, लगाया है अपने घर में, उसमें आम जरूर फलेंगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वे आम मुझे कच्चे खाना है, खट्टी अवस्था में खाना है, या मीठे होने पर खाना है, या उन आमों के खट्टे होने पर भी मुझे उसमें कुछ मीठी चीज मिला के खाना है, और या कि उनके पक जाने का इंतजार करना है, और पके या नहीं पके, जब पकेंगे तब पकेंगे, अभी तो मुझे तोड़ करके उनकी चटनी बना के खाना है, तो मैं चटनी बना के भी खा सकता। तो ऐसे तो मेरे कर्म हैं जो कि मैंने अपने भीतर बीज के रूप में संचित करे हैं, जब वे फलेंगे तो मुझे उन्हें खट्टी अवस्था में ही अपने मन को खट्टा करके भोगना है, या उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला करके खट्टा मीठा भोगना है, या इंतजार करना है कि वे पकेंगे तब खाएंगे, और या कि समय से पहले ही उनकी चटनी बना के और नष्ट कर देना, ये हमारे हाथ में। हाँ, मैं वो वाली चटनी बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, कर्मों की चटनी बनाना हमारे हाथ में। हाँ, ऐसा यदि हम कर ले, उन कर्मों के फल को भोगते समय यदि हमारी सावधानी है, मजा तो ये है, हम सोचते हैं कि कर्म बांधते समय सावधानी रखनी है, नहीं भैया, कर्म भोगते समय सावधानी रखें तो कर्म के बंधन अपने आप ढीले पड़ जाएंगे और नए तो बंधेंगे ही नहीं। क्रोध के उदय में, परिणामों में विकलता आए बिना नहीं रहेगी, लेकिन विकलता मुझे करनी है या नहीं करनी है, ये मेरे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। क्रोध का उदय मेरे आत्मा को क्रोधित करे बिना नहीं रहेगा, लेकिन मुझे उस समय अपने उन परिणामों को क्रोध रूप होने देना है या नहीं होने देना है, विषाद करना है या नहीं करना है, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। कमती करना है, ज्यादा करना है, ये भी मेरे ऊपर निर्भर करता है। अभी करना है कि नहीं करना है, पोस्टपोन कर देना है तो पोस्टपोन भी कर सकते हैं। जैसे रजिस्ट्री आती हम लेने से इनकार कर दें कि मिले ही नहीं, वापिस रिटर्न। हमने टेप भर लिया है अगर किसी चीज का और हमें नहीं लगता है कि ये ठीक है तो मैग्नेटाइजर पर चढ़ा दो तो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जो टेप किया है। वहीं के वहीं भी हम चाहें तो बंधे हुए संस्कारों को नष्ट कर सकते हैं। उदय में आने पर हम उनके फल को भोगते समय अगर सावधानी रखें तो हम उनको नष्ट कर सकते हैं, नए कर्मों का आना रोक सकते हैं। सारे उपाय यही हैं। मन अगर ज्ञान और वैराग्य की शक्ति से युक्त है तो ऐसा मन अपने कर्मों के फल को भोगते समय सावधानी रखेगा। बस इतना अपने को सीख लेना। पूरी जिंदगी सारी साधना इसी बात की है कि मैं किस तरह से संसार में प्रवृत्ति करूं। कदम चरे कदम चिट्ठे कदम भासे जभुंजे च, भगवान में कैसे चलूं, कैसे उठूं बैठूं खाऊं पीऊं आऊं जाऊं, जिससे कर्मों का बंध ना हो। तो कहते जदम चरे जदम चित्ते जदम भुंजे जासे जे, यत्न पूर्वक चलो उठो आओ जाओ, खाना पीना जो भी करना है करो, यत्न पूर्वक सावधानी पूर्वक करो जिससे कि कर्मों का बंध ना। बस इतना ही उपाय है, इतना ही संवर का उपाय है, इतना ही नए आने वाले संस्कारों को रोकने और पुराने संस्कारों को तोड़ने का उपाय है। भैया अगर प्रवृत्ति सावधानी पूर्वक हो तो एनर्जी वेस्ट नहीं होती है बल्कि एनर्जी संचित होती है, और उस संचित एनर्जी से, उस संचित आत्मशक्ति से, बल से हम जो चाहें वो कर सकते हैं। संवर भावना अनेक संवर के भेदों में से एक है मात्र, जिन प्रयासों से हम अपने आने वाले कर्मों को रोक सकते हैं। वे बहुत सारे प्रयास हैं, उनमें से संवर भावना भी एक प्रयत्न है। सा गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्री ओ तपसा निर्जराचा, संवर भी होता तपस्या से और निर्जरा भी होती, उसको अपन कल चर्चा करेंगे। लेकिन आज अपन ये देख लें कि यदि मन वचन काय की प्रवृत्ति को हम पूरी तरह नहीं रोक सकते हैं, गुप्ति के मायने हैं प्रवृत्ति को पूरी तरह से रोक देना, निवृत्ति में चले जाना। हम अभी प्रवृत्ति मार्ग अपनाए हुए हैं, निवृत्ति हमारा लक्ष्य है, समस्त कर्मों से उपरत होना है, लेकिन अभी ऐसा आसान नहीं है। इसलिए मैं प्रवृत्ति तो अपना रहा हूं पर प्रवृत्ति पर अंकुश रखना पड़ेगा। तो कहते हैं प्रवृत्ति अपनाओ तो अंकुश रखना, समिति का सावधानी रखना, जो भी क्रिया करें दयापूर्वक करें। दयापूर्वक क्रिया करेंगे तो असावधानी हो ही नहीं सकती। जैसे रास्ते से चलते समय सावधानी रखते हैं कि कांटा ना लग जाए, कांच ना चुभ जाए, पत्थर ना गड़ जाए, ऐसी अगर ये ध्यान रहे कि कोई जीव ना मर जाए, तो भैया जीव न मर जाए तो फिर तो अपने आप कांटा भी नहीं चुभेगा और पत्थर भी नहीं लगेगा और कांच भी नहीं गड़ेगा। देख लो, करके देख लो। वो कह रहे हैं कि सावधानी भर रखनी है किस तरह की, कि मेरा मन इतना दया और करुणा से भर जावे कि मेरी हर प्रवृत्ति में किसी की क्षति ना हो। अगर ये भाव जागृत हो जावे तो हो गया, संवर हो गया। ये ज्ञान और वैराग्य, ये शक्ति है हमारी चेतना की, जो कि हमारे नए संस्कारों को आने से रोकती है, पुराने संस्कारों को ढीला कर देती है। फिर कहते हैं कि इतने से भी काम नहीं चलेगा, प्रवृत्ति तो आपने अंकुश तो रख लिया उस पर, सागुप्ति समिति, अब साथ में भावनाएं कैसी हों, धर्म से युक्त हों, क्षमा भाव धारण करना ताकि क्रोध के तरफ जाने का अवसर ही ना मिले। मान कषाय को शांत करने के लिए विनय भाव हमेशा बनाए रखना, तो वो शांत रहेगी मान। दो में से एक कोई रहता है अंधेरे उजाले की तरह, या तो विनय रहेगी या कि मान रहे। और जरा परिणामों को सरल रखना ताकि कुटिलता का संस्कार हावी ना हो सके, और संतोष पूर्वक अपना जीवन जीना। नहीं तो संसार में लोभ बहुत है, भीतर भी बहुत बैठा हुआ है, संचित है लोभ, जोर मारता है। पर संतोष पहले से ही रख लेना, जीवन की यात्रा की शुरुआत में ही रख लेना, लिमिट कर लेना कि बस इतना करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। दुकान तो खोलूंगा, 8 घंटे बैठूंगा, 8 घंटे 1 मिनट नहीं, 8 घंटे मेरा काम है। क्यों 1 मिनट ज्यादा, क्यों 1 लाख रुपए आ रहे हैं, आते होंगे कल देखेंगे, आज तो 8 घंटे का, यानी 8 घंटे का अर्थ पुरुषार्थ है, कमा रहा हूं 8 घंटे कमाऊंगा। सोना खाना पीना आना जाना 8 घंटे मामला है, तो 8 घंटे करूंगा, उसके अलावा नहीं। और 8 घंटे फिर भी मेरे पास सेफ हैं, वो मेरे धर्म ध्यान के लिए। 24 घंटे ही तो होते हैं, और तीनों पुरुषार्थ मुझे करना है, क्योंकि अभी मैं पूरी तरह से निवृत्ति मार्ग नहीं अपना पाया हूं। मोक्ष पुरुषार्थ अभी मेरे को सूझता नहीं है, मेरी उतनी सामर्थ्य नहीं है, तो मैं 3 पुरुषार्थ करूं। और जब 8 घंटे दुकान पर बैठूं तो 8 घंटे से ज्यादा न बैठूं, और जिन 8 घंटे बैठूं उनमें भी सावधान रहूं कि धर्म पूर्वक ही मैं अपना अर्थ पुरुषार्थ करूं, काम पुरुषार्थ भी धर्म पूर्वक करूं। तब देखिएगा कैसे नहीं जीवन सार्थक होता, कैसे नहीं प्रवृत्ति हमारी ठीक होती है। प्रवृत्ति में धर्म शामिल हो जावे। 24 घंटे ऐसा नहीं है कि जब 10 दिन आएंगे पर्युषण के तो एक एक दिन एक एक धर्म मना लेंगे कि आज क्षमा धर्म मनाना है और उसकी पूजा कर लेंगे और कल मार्दव धर्म की पूजा करनी है। ये तो जिंदगी निकल गई करते करते। लेकिन रोज क्या 10ों धर्मों की पूजा करते हैं हम, मंदिर में नहीं जीवन में। रोजमर्रा के जीवन में पूजा करने के मायने हैं कि उसको अपने जीवन में उतारना। जब क्रोध के अवसर आवे, गाली सुन मन खेद न आने, गुण को ओगन कहे आने। और क्या विचार करना कि जे कर्म पूरब किए, खोटे सहे क्यों नहीं जी रहा। मैंने ही तो कुछ किया होगा जिसकी वजह से ये कर्म का उदय आ रहा है। मुझे सावधानी रखना चाहिए, अगर मैं इस समय विचलित हो जाऊंगा तो नए कर्म और बांधूंगा। मुझे ये सावधानी रखना, यही तो संवर भावना है। 24 घंटे 2-4 मिनट को नहीं भैया, जब जब भी ऐसा अवसर आए तब धर्म हमारे जीवन में। और अनुप्रेक्षा, अगर हम थोड़े से भी गड़बड़ाने लगे उस धर्म से तो तुरंत हमारे विचार की प्रक्रिया हमें संभाल लेवे, पुनः धर्म में लगा देवे। हां, अनुप्रेक्षा हमें धर्म में लगाती, धर्म हमें समिति में और समिति हमें गुप्ती की तरफ ले जाती। ये सब इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। अगर गुप्ती नहीं हो पा रही तो समिति, समिति को समीचीन बनाता है धर्म, धर्म को समीचीन बनाती है अनुप्रेक्षाएं, और अनुप्रेक्षा को समीचीन बनाती है परिचय विजय। वैसे तो लोग 12 भावनाएं बहुत भा लेते हैं, लेकिन परिचय सहन करते हुए 12 भावनाएं भाना बहुत आसान नहीं है। जब जिस चीज को हमने अपना माना था वो क्षणभंगुर होने की वजह से अचानक विलुप्त हो गई, तब उस समय शांत परिणाम रहना, समता परिणाम रहना। भूख और प्यास की वेदना सब सतावे तब अनुप्रेक्षा याद आ जावे उस समय में। तो 22 परिचय सहन करते हुए, और जब हम 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, ऐसा नहीं कि पंखा जला करके बढ़िया कूलर लगा करके डनलप पे बैठ करके 12 भावना का चिंतन कर रहे हैं, तो फिर 1200 भावना का कर लो तो भी कुछ नहीं होने वाला। हमेशा सहता क्षुधा का और प्यास का, दुनिया भर के परिचय सहन करता उसको परिचय विजय नहीं मानते। जो चारित्र के साथ परिचय विजय सहन करता उसको मानते, जो अनुव्रत और महाव्रत रूप चारित्र को अंगीकार करे और फिर परिचय को सहन करे, 12 भावनाओं का चिंतन करे, साथ में अपने जीवन को धर्ममय बनावे और दया पूर्वक अपना आचरण करे और ध्यान रखे कि मुझे तो निवृत्ति ही प्राप्त करनी है, तो प्रवृत्ति पर इतना अंकुश रख लेंगे अगर, तब जाकर के जो है और हमारा जीवन में जो नए संस्कार हमें कौन से डालना है, खोटे डालना है कि भले डालना है, ये हम पर निर्भर करेगा। भैया जीवन में अगर भले संस्कार डालना शुरू कर दो तो दो लाभ एक साथ होते हैं कि आगे के लिए भले संस्कारों का डिपॉजिट ज्यादा हो जाता है और खोटे संस्कार जो पुराने थे वो अपने आप हटने लगते हैं, क्योंकि जगह तो उतना ही है। अब कछु सामान धर लो, जैसे कमरे में इतनी जगह है, अब चाहे आप कचरा भर लो और चाहे इसमें सुगंधित पदार्थ भर लो, उतना ही है। और जितना जितना सुगंधित पदार्थ भरोगे उतना उतना कचरा भी गंदगी उतनी उतनी बाहर होती जाएगी, ऐसा मामला है। जितने जितने परिणाम निर्मल होते जाएंगे उतनी उतनी भीतर की जो अशुभ परिणति है वो अपने आप हटती चली जाएगी, उसके लिए कोई अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये 2-in-1 वाला मामला है, एक करते हैं और दो लाभ होते हैं। कर्म के उदय को भोगते समय समता रखते हैं तो एक साथ दो काम होते हैं कि पुराने जो खोटे कर्म हैं, संस्कार हैं, वे मिट जाते हैं, नए संस्कार बंधते नहीं हैं। और कोई व्यक्ति तो कहता कि बात भी नहीं बिगड़ती, जैसे कि गुस्सा आवे और हम समता परिणाम रख ले तो कितनी बातें होती। गुस्सा का जो उदय आया था सो वो भी हमने बिना फल लिए और निर्जरित कर दिया, नष्ट कर दिया, नए गुस्से के संस्कार को रोक दिया और बात बिगड़ जाती। अगर गुस्सा करते सो बात भी नहीं बिगड़ पाई, तीन तीन फायदे हो गए। ऐसा हम विचार करें और ऐसा विचार करके और अपने जो संस्कार हैं उनको ठीक करें, बुरे संस्कारों को हटाएं और भले संस्कारों को प्रबल होने दें। इतनी ही प्रक्रिया हम यदि सावधानी से करना चाहें तो कर सकते हैं। हमें इतना ही ध्यान रखना है कि मन हमारा ज्ञान और वैराग्य की शक्ति से युक्त हो और हमारी जो प्रवृत्ति है वो समीचीन। जब जब भी मेरे जीवन में मन में विकारी भाव आवे तब तब मैं उन पर अंकुश लगाऊं, उन्हें संभालूं, क्योंकि वे मेरे किसी पूर्व संचित संस्कार की वजह से ही तो आए हैं, किसी और ने तो मेरे अंदर डाले नहीं है। जो भी कचरा या जो भी अच्छी चीजें मैंने अपने भीतर संचित कर रखी हैं वे ही उन्हीं को तो मुझे फेस करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये मेरे किसी अज्ञानता पूर्वक मैंने कोई संस्कार खोटे डाले होंगे जिसकी वजह से आज मेरा मन खोटा हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं सावधानी रखूं तो ये सब निकल जाए। बैठ के शांति से देखना चाहिए। कई कई बार ऐसा होता है हम सोचते हैं कि माला फेरेंगे और माला फेरना शुरू करते हैं और नाना प्रकार के खोटे विचार मन के भीतर जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होगा, ऐसे बाह्यात विचार हमारे भीतर आएंगे, हम बड़े मुश्किल में पड़ जाते हैं कि अच्छी भली माला देने बैठी थी, इससे अच्छा तो नहीं देते, तो ये विचार ही नहीं आते, ऐसा लगने लगता कई बार। लेकिन नहीं भैया, वो जो माला देते समय भीतर बैठे हुए अशुभ कर्म है उनका उदय आ करके समय से पहले उदीर्ण होकर निकल रहा है। शांति रखो, निकल जान दो, कचरा है पूरा। हाँ, आप तो चुपचाप बैठे रहो, उपद्रव में नहीं पड़ना। अब ये खोटे विचार मेरे भीतर के, इनको सप्रेस भी नहीं करना, कह रहे कहां से आगे हटाओ तो नहीं, देखो मुस्कुराओ मनी मन कि ये सब भरा था कचरा मेरे भीतर, कैसे कैसे मिथ्या विचार आ रहे हैं मेरे भीतर बिना निमित्त के कर्म के उदय में, और मैं बैठा हूं माला लेकर के शांत धरन सिद्ध कर रहा हूं और खोटे विचार आ रहे हैं, निकल जाने दो, सब निकल जाएंगे। ये तो हमने उपाय किया, उसी के लिए तो उपाय कर रहे हैं, पर हम यहां से उठेंगे नहीं और उन खोटे विचारों का समर्थन नहीं करेंगे, उनके अनुसार अपने जीवन में प्रवृत्ति नहीं करेंगे। मेरे अंदर उदय में आ सकते खोटे विचार, पर मेरी प्रवृत्ति मेरे हाथ में है। ऐसा विचार करके हम आसानी से और इस संवर तत्व को समझ करके इस संवर भावना को भा सकते हैं भैया, और अपने जीवन के खोटे संस्कारों से बच करके और अपने जीवन को जैसे कि नदी में दो किनारे होते हैं, ठीक ऐसे ही हमारे अंदर भी शुभ और अशुभ प्रवृत्ति होती ही रहती है। लेकिन अगर वो नदी किसी महासागर में जाकर के लीन हो जाए तो बताइएगा फिर वो सागर हो गई कि नहीं हो गई, वो बहुत विशाल हो गई, अब किनारे से पार हो गई। बस ऐसे ही हमारे जीवन की धारा भी है, शुभ और अशुभ दोनों के बीच से बहती रहती है, और जब हम आत्मस्थ हो जाते हैं तो दोनों किनारे समाप्त और हम चेतना में लीन हो गए, वही तो हमारा मुख्य लक्ष्य है। लेकिन वो एकदम आसान नहीं है, तो अभी हम क्या करें? हम इतने ही करें कि चेतना की धारा जो कि शुभ और अशुभ परिणामों के बीच से बहती है उसको संभाल करके बहाएं और लक्ष्य हमारा बना रहे। कहीं किसी रेगिस्तान में जाकर के वो चेतना की धारा इस संसार के रेगिस्तान में उलझ के ना रह जाए, बल्कि अपने उस महासागर उस आत्मा की तरफ पहुंचती बढ़ती चली जाए। इतना ही हम ध्यान रखें, हमारी प्रवृत्ति को हम कमांड करें और व्यवस्थित करें, दिशा दें। तो हम आसानी से अपनी इस जीवन की यात्रा को पूरा कर सकते हैं। ये विचार हमारे भीतर निरंतर चलता रहे, इस विचार की निरंतरता का नाम ही संवरण उपेक्षा है। बुद्ध के जीवन की एक घटना आपको सुनाऊं, शायद पहले भी अपन ने कहीं पढ़ी सुनी होगी, उससे जरा आसानी हो जाएगी। वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उनके शिष्य भी बैठे हुए थे, और एक व्यक्ति आया, पता नहीं पुराना कुछ हिसाब किताब रहा होगा उसका, आकर के उसने गालियां देना शुरू कर दी। बने हुए हैं बाबा, खा रहे हैं लोगों का आराम से, कुछ इनको सूझते ही नहीं है, ना काम धंधा है ना कुछ है, जो भी समझ में आया। अब अपन से तो उतनी बातें नहीं आती खराब खराब, हाँ उसने बहुत सारी बातें कही, और एक दो मिनट नहीं आधे घंटे तक, पर इसके बावजूद भी बुद्ध कहते हैं कि मुस्कुराते रहे। उनके शिष्यों में कसमसाहट कि अगर जरा इशारा करें तो इस आदमी को उठाकर फेंक देंगे बाहर। अपने भीतर की गंदगी को नहीं फेंकेंगे, आदमी को उठा के फेंकेंगे, ये दुनिया की रीत है। अपने भीतर जो संक्लेश हो रहा है उस परिणामों से उसको नहीं फेंकने का मन होता, बाहर कोई गाली देवे तो उसको फेंकने का मन होता, गाली देने से हमारे भीतर जो परिणामों में उथल पुथल हुई उसको रोकने का मन नहीं होता, उसको बाहर फेंकने का मन नहीं होता, किसी का नहीं। बहुत पहुंचा हुआ, बहुत साधक होगा तो ही कर पाएगा। भैया अपन सबके जीवन में अगर ये चीज आ जावे तो कितना शांत जीवन हो जाएगा, बाहर के सारे उपद्रव होने के बावजूद भी भीतर शांति ही रहे। और बुद्ध शांत बैठे मुस्कुरा रहे, उस व्यक्ति के गाली देते देते आधे घंटे हो गया, और उसने अब मजा तो तब आता है जबकि दोनों तरफ से हो, तुमने एक दही हमने दो तो हमारे पास फिर चार हैं, तुमने उसको रिटर्न किया आठ, तो मामला बढ़ता है। लेकिन अब ये क्या, आधे घंटे तक एक ही तरफ से, वन साइडेड कितनी देर चलेगा, वो थक गया बेचारा। लेकिन थकने के बाद झुंझलाहट बस उसने बुद्ध के ऊपर थूक भी दिया, हाँ इतनी क्रोध की तीव्रता। उनने क्या किया, उनने धीरे से अपने दुपट्टे से पोंछ लिया बस, और फिर भी कुछ नहीं बोले, फिर भी मुस्कुराते रहे, ये पैर पटकते हुए वापस लौट गया। लेकिन रास्ते में जैसे जैसे घर की तरफ बढ़ता था वैसे वैसे उसका मन अब धीरे धीरे शांत हुआ, तो एक ही बात मन में आई, मैंने इतनी गालियां दी उसने कुछ नहीं कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुन नहीं पड़ता हो, नहीं सुन तो पड़ता होगा, तब तो मुस्कुरा रहा था वो, और बाकी सब लोग भी उसकी तरफ देख रहे थे, तब वो सबको शांत रहने के लिए इशारा कर रहा था, इसका मतलब है सुन तो रहा था। आगे बढ़ा, लेकिन इतनी गाली देने के बाद भी उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, अरे बुद्धू होगा शायद, नहीं बुद्धू तो नहीं होगा वो, लगता तो बहुत समझदार था। और घर पहुंचते पहुंचते अब बेचैनी होना शुरू हुई, मुझे ऐसा नहीं करना था, हां इतना भी बहुत मुश्किल है, कर लेने के बाद ये भाव आ जावे कि मुझे ऐसा नहीं करना था, वरना यही आता है कि मैंने ठीक किया था, चार और लोगों से भी पूछूंगा, वे भी मेरा सपोर्ट करेंगे कि हां ठीक किया था तुमने, हम यही तो चाहते हैं, हम यहां पर कुछ गलत करते हैं तो और चार लोगों से उस पर सील लगवाना चाहते कि हाँ ठीक तो है, संसार में तो ऐसे ही चलता है, गुस्सा तुमने थोड़ी अकेले करो, सब दुनिया कर रही, तुमने तो कमाई करो और करो कर अब जा। हाँ ऐसे ऐसे मिलेंगे, ऐसा कोई नहीं कहेगा कि भैया इतना भी काय को किया, अपना ही अहित कर लिया, उसका तो जो होना था सो हो ही गया, अपना और कर लिया अहित, ऐसा कहने वाला बहुत कम मिलेगा। हमारा मन भी ऐसा नहीं कहेगा, ना हमारा मन ऐसा दूसरे से सुनना चाहेगा। और अब उसके भीतर छटपटाहट मची है, कि मैंने ऐसा ठीक नहीं किया, सारी रात सो नहीं पाया, रात 3 बजे अंधेरे में उठ करके, मैंने ठीक नहीं किया। वो तो बहुत सज्जन थे, वो तो बहुत भले व्यक्ति थे, मैंने इतनी गालियां दी इसके बाद भी कुछ नहीं बोले, मैंने ठीक नहीं किया। वापिस भागता है भागता है, पहुंचता है, सुबह हो जाती है, और देखता है उस पेड़ के नीचे तो बुद्ध है ही नहीं, और आगे जाकर के देखता है तो किसी दूसरे पेड़ के नीचे बैठे हुए दिख जाते हैं, तो चरणों में जाकर के गिर जाता है, रोता है कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे क्षमा कर दें। तो कहते हैं कि बुद्ध उसे उठा करके गले से लगाते हैं, कह रहे इसमें क्षमा मांगने की क्या बात है, तुम वो हो ही नहीं, मैं किसको क्षमा करूं। तो वो कहता कि नहीं आप भूल गए होंगे,
मैं वो ही हूं। बोलते अगर तुम वो होते तो गालियां देते, तुम वो हो ही नहीं, तुम क्षमा कैसे मांग रहे। वो जो कल था वो गाली देने वाला कोई और था, ये जो क्षमा मांग रहा है तो वो कोई और है। और वो जो पेड़ जिसके नीचे बैठा था देख लो, वो तो है ही नहीं, मैं भी वो नहीं हूं। यहां सब प्रवाहमान है, यहां कुछ किसी के लिए ठहरता नहीं है, यहां परिणाम प्रतिक्षण बदलते हैं। फॉरगिव एंड फॉरगेट बहुत कठिन है। फॉरगिव भी बहुत कठिन है और फॉरगेट भी बहुत कठिन है। गलती को क्षमा कर देना और भूल जाना बहुत कठिन है। वो कह रहे हैं कि ये कोई दूसरा ही व्यक्ति है, किसी और दूसरे पेड़ के नीचे बैठे हूं मैं, क्षमा मांगने की भी आवश्यकता नहीं। वो जो तुमने किया था वो तो कल ही नष्ट हो गया, अगर आज क्षमा मांग ली तो सब नष्ट हो गया, बदल ही गया। भैया इतनी सी बात अपन के समझ में कब आएगी? अपन तो प्रयत्न ही कर सकते हैं, सो रोज रोज प्रयत्न करते हैं। जिस दिन आ जाएगी अपनी समझ में तो अपना जीवन भी सार्थक हो जाएगा। हम सब यही भावना भाएं कि जल्दी से हमारे जीवन में ये सारी बातें जो आचार्य भगवंतों ने हमारे कल्याण के लिए कही हैं सो समझ में आवें और हम अपने जीवन को सार्थक करें, अपना कल्याण करें। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।
गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह लग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की